ओम शांति। कल हम सभी ने बाप दादा की मुरली सन्मुख सुनी। सबने कहा बहुत प्यारी मुरली थी, लेकिन उस प्यारी मुरली के अंदर कितनी सारी न्यारी बातें थी, कई राज थे छिपे हुए, जो समझने के लिए बहुत सूक्ष्म और विशाल बुद्धि की जरूरत होती है। आइए इन छिपे हुए राजों को स्पष्ट करने लिए हमारे बीच एक विशेष हस्ती उपस्थित है। बंबई से पधारे हुए आदरणीय रमेश भाई जी, आपका सभा में तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप यज्ञ के प्रमुख वरिष्ठ भाइयों में से एक है। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से बीकॉम एवं एलएलबी डिग्रीज लेने के पश्चात आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भी फर्स्ट क्लास फर्स्ट प्राप्त किया। पूर्व एवं पश्चिमी फिलोसॉफीज में भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। कला, साहित्य, अर्थशास्त्र एवं फिलोसॉफी आदि विविध विषयों पर आपने 4000 से अधिक किताबों का अध्ययन किया है। 1952 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए तथा 1961 से आप पूर्ण रूप से यज्ञ के साथ जुड़ गए। सेवा की अनेक नई गतिविधियां यज्ञ में आपने शुरू की। विदेश गए हुए पहले पहले डेलीगेशन में आप शामिल थे, जिसके द्वारा लंदन, हांगकांग में सेंटर्स खोले गए। उसके पश्चात यूएसए, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में सेंटर्स खोलने में भी आपका योगदान रहा। आपने एवं आदरणीय उषा बहन जी ने गुजरात में भी कई सेंटर्स खोले। वर्तमान समय आप यज्ञ में कई जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। विद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के रूप में आर्थिक एवं कानूनी कारोबार आप संभालते हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट एवं श्री शिव आध्यात्मिक फाउंडेशन के आप मैनेजिंग ट्रस्टी है। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल सोसाइटी के आप फाउंडर सेक्रेटरी है। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। स्पार्क एवं जूरिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन है। आप एक बहुत कुशल वक्ता एवं लेखक भी है। कई किताबें जैसे कि पवित्र धन आदि एवं कई लेख, डांस ड्रामाज आदि आपने लिखे हुए है। यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सलेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस विशेष अवार्ड से आपको नवाजा है। तो यह हमारा भाग्य है, ऐसे बहुमुखी व्यक्तित्व के द्वारा हम कल की बाबा की मुरली का राजयुक्त स्पष्टीकरण पाएंगे। आदरणीय रमेश भाई जी।
ओम शांति। मैं बहनों को हमेशा ही कहता हूं कि ये लंबा चौड़ा परिचय की जरूरत नहीं है, खाली एक ही परिचय सच्चा है, सार्थक है। रमेश भाई बाबा का बच्चा है, बस वही बाबा का और बच्चा। रमेश भाई का परिचय बहुत ही अच्छा है। रमेश भाई आत्मा है, बाबा का बच्चा है। मैं समझता हूं इतना ही परिचय देना चाहिए औरों का भी। हम फंक्शन यहाँ होते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे स्टेट सेक्रेटरी वक्ता का परिचय इतना लंबा देता है कि वक्ता का परिचय से परिचय वक्ता का भाषण से भी लंबा हो जाता है। कभी कभी ऐसी विचित्रता हो जाती है। कल की मुरली के लिए मैं टाइमिंग भले बता दूं, 7:50 दादी जी स्टेज पर आए। कल एक विशेष बात किया था सबने, आप सबको मालूम नहीं होगा क्योंकि स्टेज के पीछे होता है। दादी जी को भी व्हील चेयर के ऊपर नीचे से ऊपर यहाँ तक लेके आए, इसलिए क्या होता है, नहीं तो चढ़ के आना पड़ता है तो दादी जी का श्वास फूल जाता है। तो स्टेज पर बैठ करके उसके बाद 2-3 उस प्रकार से व्यतीत करनी पड़ती है। इसके बदले में कल सीधा ही ऊपर व्हीलचेयर से आ गए और अंदर सीधा पैदल करके इतना आए तो एकदम फ्रेश थे, और उसके कारण सीधा ही 7:50 को बाबा के पास जाने का गीत भी बजा। 8:05 समझो कि बाबा की पधरामणी हो गई, हमारी ट्यूबलाइट आदि जो है सफेद हो गई। बाबा ने मुरली जो है 8:10 चलाई, शुरू किया, और जो मुरली जो है उसका ऑपरेटिव पार्ट, अर्थात जब मुन्नीबेन ने कहा कि बाबा सेवा का टर्न इस प्रकार इतना ईस्टर्न जोन आदि का है, वो 8:55 को कहा, माना बाबा ने बराबर मुरली 45 चलाई। 45 में जो भी बात कही हो तो आप सब हम सब इसका विचार करेंगे। उसके बाद जोन्स की टर्न की बात आई, उसके बाद विदेश के सेवा की टर्न की बात आई, और उसके बाद 9:05 को स्टेज का कार्यक्रम शुरू हुआ। वो बराबर 10 तक चला, मतलब 55 जो है बाबा का स्टेज का कार्यक्रम चला। इस प्रकार से गिनती करें तो 8:05 को बाबा आए और 10 तक गए, मतलब इस प्रकार से 2 करीब बाबा हम बच्चों के साथ में रहे। 2 में क्या क्या प्राप्ति कराई वो तो आप सब हम सब ने नोट किया हुआ ही है। हमारे राजू भाई ने कल की मुरली का टाइटल लिखा हुआ है, साइंस के साधनों ने मिलन का रास्ता बहुत सहज बना दिया है, लेकिन मैं हमेशा ही डरता हूँ लेकिन शब्द से, लेकिन सबसे अच्छी याद दिल की है। दिल में बाबा बाबा याद हो, बाबा ही दिल में समाया हुआ हो। इस प्रकार से इन्होंने कल की मुरली का सार टाइटल के अंदर दे दिया है। शुरू की लाइन के अंदर भी बहुत अच्छी समझने जैसी बातें हैं। देखो मैं पहले कल के मुरली की सूरी 2-3 लाइन जो है मैं पढ़ता हूँ, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओम शांति। सभी बाप दादा के लाडले बच्चों को देख बाप दादा बहुत हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि हर बच्चा बाप को कितना प्यारा है। हर एक का चेहरा देख बाप दादा के मन में एक एक बच्चे की सूरत बाप की मूर्त में देख बाप को भी कितना हर्ष होता है। हर बच्चों की हर शक्ल में बाप को देख बाप हर्षित होते हुए ऐसे ही हर एक भारत या विदेश दोनों के तरफ के बच्चों के साथ साकार में मिलन सामने देख बाप को कितनी खुशी होती है। पहली बात तो देखिए, पहले वाक्य में कहा है सभी बाप दादा के लाडले बच्चों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। एक ही महावाक्य में बाप दादा शब्द 2 उस बाबा ने इस्तेमाल किया है, पर एक बाप दादा के लाडले बच्चों के साथ कनेक्शन में है और दूसरा बाप का अपने साथ क्या कनेक्शन है, यही इसको कहते हैं टोटोलॉजी। एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ एक ही महावाक्य में उच्चार करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ महावाक्य में उच्चार टोटोलॉजी के रूप में किया हुआ हो तो एक अव्यक्त मुरली की शुरुआत थी कि सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रियान करता है। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रियान करता है, एक ही महावाक्य में 4 रूह शब्द आया, परंतु चारों बार इस्तेमाल जो हुआ रूह शब्द उसका अर्थ अलग अलग था। सुप्रीम रूह परमात्मा के लिए, रूह हम आत्मा के लिए, रूह और रिहान जो है आपस में लेन देन करने के लिए। इस प्रकार से इसको टोटोलॉजी कहते हैं। और बाबा साहित्य का स्वामी है, साहित्य के ऊपर बाबा का संपूर्ण कंट्रोल है, इसके कारण बाबा ही ऐसी आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी ऐसी फिलोसॉफिकल और साथ ऐसी जिसको दुनिया के हिसाब से कहे ऐसे टोटोलॉजी आदि आदि के प्रकार की बातें कर सकते हैं। तो इसमें दूसरी बात देखो, बाप दादा 2 आया, परंतु आगे क्या है, हर बच्चा बाप को कितना प्यारा है। यहाँ पर बाबा ने ये नहीं कहा हर बच्चा बाप दादा को कितना प्यारा है। बाप दादा बहुत हर्षित होते वो बराबर है, परंतु क्यों हर बच्चा बाप को कितना प्यारा है, दादा शब्द यहाँ पर निकल गया। कारण क्या है, बाप दादा साथ में रखते हैं बाबा धर्मा बाबा को, परंतु कई बातें ऐसी है जो बाप के साथ ही कनेक्शन में होती है। हम बच्चे भी बाप को याद करते हैं, बाप कहते बाबा, हम भी कहते वाह बच्चे वाह, हम बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप भी कहता है वाह बच्चे वाह। तो ये बाप दादा की के बीच में मैं बाप के साथ का कनेक्शन की जो बातें हैं, वो तो दादा को क्यों बीच में रखा, कारण यही है कि बाबा अभी ये जो मुरली के शुरू का पैराग्राफ जो है उसके अंदर हमें पालना देता है, पालना के द्वारा कि कैसे आपस में परमात्म प्यार प्यार की पालना का प्राप्ति का अनुभव हो सकता है। और ये परमात्म प्राप्ति का अनुभव के कारोबार बाबा साथ में ब्रह्मा बाबा को रखते हैं, दादा को रखते हैं, ताकि दादा को उसकी ट्रेनिंग मिले, क्योंकि सतयुग जैसे सतयुग त्रेता आदि में बाप तो नहीं होगा, दादा ही होगा, और दादा के रूप में दादा और उसके आधार पर भारत के राजा महाराजा विश्व महाराजा विश्व महारानी समाज को और प्रजा को कैसे सुखी करना चाहिए, कैसे उनको प्यार करना चाहिए, ये सब बातें जैसे संगम युग में बाप अपने हम बच्चों को प्यार देता है, इसी प्रकार से सतयुग त्रेता में जो दादा और दादा के साथ उसके बाद में आने वाले विश्व महाराजा के पोजिशन पर आने वाले वो समाज को कैसे सुख देते रहेंगे, इसकी ट्रेनिंग अभी से बाबा देते हैं। क्योंकि बाबा को सतयुग त्रेता के कारोबार में बाबा आ नहीं सकते, बाबा हम बच्चों को ही हाथ में कारोबार दे करके ऊपर परम धाम में बैठे रहते हैं। तो हम बच्चों को हाथ में जो कारोबार देना है उसके पहले से ही अर्ज की तैयारियां हम सबको करा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो ये सीखने का है, और जो सीखेगा वही प्राप्त करेगा और उसके आधार पर वही निमित्त बनेगा। इसलिए बाबा ने ब्रह्मा बाबा को साथ में रखा, इसलिए कहा बाप दादा लाडले बच्चों को देखता, ब्रह्मा बाबा भी लाडले बच्चों को देख, परंतु आश्रित कौन होता है, हाँ बाप को देख कितना प्यारा है, अरे की सूरत जो है वो मूरत जो है, बाप की सूरत और मूरत देख करके सब खुश होते हैं, और जैसे हर बच्चे की शिकल में बाप को देख बाप हर्षित होता है, हम बच्चों की शिकल में भी बाप को देख, बाप दादा को नहीं देखने की बात है, ये थोड़ा बाप दादा और बाप के बीच का जो कारोबार जो है उसको समझने के लिए थोड़ी गहराई में मुरली पढ़नी पड़ेगी, तब वही दोनों के पार्ट को हम समझेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो बाप को और बाप दादा को एक ही समान समझ करके कारोबार करें। जैसे बाबा कई बार मुरली में कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बाप ये नहीं कहते हैं कि मुझ बाप दादा को याद करो, तो बाप को याद करने का है, तो इसके कारण बाप की याद रहती है, बाप की दिल में हम है और हमारे दिल में बाप है। बाबी आगे बाबा कहते सबके नियन अति नयन अति प्यारे और न्यारे दिखाई देते हैं, क्योंकि हर एक की दिल यही बोल रही है वाह बाबा वाह। तो ये जो है नयन जो है हमारे नयन जो है वो नयन की भाषा जो है वो भी सीखनी पड़ेगी, आंखों की भाषा नयनों की भाषा। हाँ बाबा कहते हैं नयन अति न्यारे और प्यारे, नयन भी हाँ इस प्रकार से हमारा अति न्यारे और प्यारे दिखाई पड़े सबको, इस प्रकार का हमारा नयन हमारा मुख का आकार आकृति व्यवहार ये होना चाहिए। और इसलिए बाबा आगे कहते हैं कि जो साकार रूप में बाप और बच्चे का यह मिलन कितना प्यारा लग रहा है साकार रूप में। हाँ भक्ति मार्ग में तो क्या सोचते रहते थे बाबा मिलेंगा मिलेंगा मिलेंगा, हाँ परंतु कल जैसे बाबा सामने बैठे थे तो इसलिए बाबा कहते साकार रूप में बाप और बच्चों का मिलन कितना प्यारा लगता है, कितने समय के बाद साकार में बाप दादा बच्चों को देख और बच्चे भी बाप को देख हर्षित होते हैं। तो आप सब जानते हो कितने समय के बाद परमात्मा का दिव्य अवतरण संगम युग में ही होता है, तो इसे कितना पुराना नाता हो गया, कितने समय के बाद संगम विनाश के बाद हम सब ऊपर जाएंगे, पर जल्दी जल्दी सत्य की दुनिया की स्थापना के कारोबार में आना पड़ेगा, तब से हम बाबा से बिछड़े हुए हो गए और संगम युग में ही बाप से मिलते हैं। इसलिए बाबा कहते इन आंखों से साकार वतन में यह मुलाकात कितनी प्यारी है, साकार वतन में साकार तन में ब्रह्मा बाबा के जैसे तन में पहले दिखाई पड़ते थे, अभी गुलजार दादी के तन में बाबा दिखाई पड़ते हैं, ये कितना प्यारा है। परंतु बाबा कहते हैं बाबा याद भी दिलाते कि यह थोड़े समय का मिलन कितना प्यारा है। कल भी देखो मैंने आपको बताया ना, 8:05 को बाबा आए और 10 बजे गए, 2 घंटे का ही मिलन। तो बाबा ने जो कहा, ये थोड़े समय का मिलन ही कितना प्यारा है, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं हर बच्चे के दिल में बाप समाया है। यह प्रेम स्वरूप हर बच्चे बच्चा दोनों के दिल में, मेरा बाबा और बाप के दिल में मेरे बच्चे हैं। हमारा स्वरूप क्या होना चाहिए? जब बाबा मिलते हैं तो स्वरूप कौन सा होना चाहिए? बाबा कहते हैं, याद दिलाते सिखाते हैं कि यह प्रेम स्वरूप, प्रेम स्वरूप जो है, स्नेह स्वरूप जो है, वो ही हमारा स्वरूप होना चाहिए। उसके आधार पर क्या होगा? हम आपस में लेन देन के लिए मिलते रहे, जो भी करते रहे, अगर प्रेम सहित और प्रेम स्वरूप में होकर के मिलेंगे तो हमारा मिलन बहुत ही मीठा मधुर हो जाएगा। बाकी नहीं तो कड़वा भी हो सकता है। कड़वा में गुस्सा में आकर के बात करे, गुस्से में आकर के मिले तो क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं हर प्रेम स्वरूप हर बच्चा। तो प्रेम स्वरूप बच्चे की, हम बच्चों को बनने की बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हर बच्चे सन्मुख में बाप को देख, दिल में मुख, दिल से दिल में मुख, मेरा मुख में मेरा बाबा यही गीत सुन रहे हैं। दिल से भी सुन रहे हैं, मुख से भी यही गीत सुन रहे हैं। फिर भी बाबा ने देखो क्या कह दिया, इस घड़ी मेजोरिटी हर बच्चे, सब सभा इतनी सारी बैठी हुई थी, सभी बच्चों के बारे में बाबा नहीं कहते, मेजोरिटी हर बच्चे। इसका मतलब क्या होगा? थोड़े ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे ये क्या है, कैसे है, क्या है, क्यों आए हैं, कैसे आए, क्यों नहीं आए, अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हमारे बहन भाइयों में उठते हैं। 100% संकल्प बाबा आया हुआ है, इस प्रकार का संकल्प 100% हो, वो बाबा कहते हैं मेजोरिटी का ऐसा हो सकता है, पर फिर भी कहीं माइनॉरिटी में ऐसे भी है जो संकल्प विकल्प में यहाँ बैठे हुए भी संकल्प विकल्प करते रहते हैं। इतना सन्मुख मिलन मनाते हुए सबकी दिल हर्षित हो रही है। बाप भी एक एक बच्चों के दिल की याद का फोटो देख हर्षित हो रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। यह मिलन कौन सा मिलन? सन्मुख मिलन, चाहे किसी के द्वारा भी हो, किसी के द्वारा भी, रथ जो भी है रथ के द्वारा मिलन होता है। पहले ब्रह्मा बाबा के रथ के द्वारा होता था, अभी गुलजार दादी के रथ के द्वारा होता है, और साधन भी है विज्ञान के, उसके बारे में भी होता है, बाबा ने आगे बताया हुआ है। यह मिलन का अनुभव साधारण नहीं है। बाबा हम बच्चों को याद दिलाते हैं ये परमात्मा और हमारा मिलन जो होता है, ये सन्मुख में मिलन जो होता है, इसको साधारण मत समझो। बाप के दिल में इतने सब बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं। ये देखिए, हर बात में ध्यान से सुनिए, पढ़िए, बाप के दिल में, बाप दादा के दिल में नहीं कहा है, इतने सब बच्चे बाप के दिल में समाये हुए हैं। तो किसके दिल में हम समाये हुए थे? बाप के दिल में। बाप दादा की बात नहीं आती है, दादा भी बाप के दिल में समाया हुआ है। हर दिल का मिलन का चित्र के रूप में देखो तो हर एक बच्चा लव में लीन है। सामने कल बैठे हुए थे, बट मेजोरिटी बच्चों के लिए बाबा कहते हर एक बच्चा परमात्म प्यार के लव के लीन में थे। और हर एक का दिल क्या कर रहा था? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और बाबा भी हर एक बच्चे के लिए कहते थे बच्चे का प्यार दिल में समाया हुआ है। फिर बाबा भक्ति का और ज्ञान का इतिहास सुनाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में ऐसा नहीं सोचा था कि प्रभु मिलन हम बच्चों के भाग्य में है। कभी किसी ने सोचा था? अज्ञान काल की बात है, अब सब यहाँ बैठे हुए, हमारा भी सबका अज्ञान काल था ही, और अज्ञान काल में हमने सभी सोचा था कि ऐसे परमात्मा का साथ मिलन सन्मुख में यहाँ हो जाएगा। भक्ति में तो क्या क्या करते थे, एक शंकराचार्य मानसरोवर की यात्रा पर लेके गया, मैंने उसका समाचार पढ़ा था, तो वहां से सामने से दूर से कैलाश पर्वत दिखाई पड़ता है, तो उसने कहा कि देखो कैलाश पर्वत दिखाई पड़ता है, तो उनके साथ के जो एक भक्त साथ में था उसने कहा ये तो पर्वत दिखाई पड़ता है। वो तो कहा, तो सन्यासी ने कहा वो तो आपकी मान्यता है, आपको पर्वत दिखाई पड़ता है, मुझे भगवान दिखाई पड़ता है। अर्थात पर्वत में भी भगवान दिखाई पड़ता है, वो भक्ति मार्ग में हम चलते रहे। यहाँ तो सन्मुख में बाप को मिलने का होता है, कितनी सुंदर बात है, कितनी अच्छी बात है। हाँ, तो इसलिए सन्मुख में बाप से मिलने का सौभाग्य हम बच्चों को मिलते हैं। इसको कहेंगे ऐसा मिलन का मौका हुआ है ड्रामा में। हम बाबा सब बातों के अंदर आखिर में कह देते हैं, हम बाबा से मिलने का प्रोग्राम भी यहाँ कैसे हुआ, ड्रामा में हुआ। बहुत अच्छा, मन आनंद में आ जाता है। भले रूप दूसरा है, फिर भी मिलन तो है ना। क्या वासना आती है, यही वासना आती है। बाबा कहते हैं कि बाप मिलने आया है, बच्चे भी मिलने आए हैं। ऐसा भाग्य साकार में, साकार रूप में ऐसा मिलेगा, यह ड्रामा में नूंद है। यह देख कितना हर्षित हो रहा है, साकार में मिलने का परमात्मा के साथ का। साकार में इतने देखो, कल कितने लोगों को मिले। हाँ, तो इसलिए साकार में मिलने का भाग्य, हाँ, कितना ड्रामा में इसकी नूंद है। फिर बाबा ने कारोबार के बाद शुरू किया है, अभी मिलने तक की बातें हैं, पालना की बातें हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा के रूप में, ब्रह्मा बाबा को भी सिखाने के रूप में बाबा ने बात किया। अब फिर स्थापना के कनेक्शन की बातें करते हैं। हमारे राजू भाई ने भी मुरली में नया पैराग्राफ शुरू किया है। अभी बाबा की हर एक बच्चों के साथ यही दिल है, हर एक के दिल यही कहती है, बच्चा हर बाप के दिल में समाया हुआ है। और समाते समाते इतनी खुशी का अनुभव करते हैं, जो करते हुए भी दिल नहीं पूरी होती है। कल हमने 2 घंटा बाबा से मिले, पर दिल पूरी हुई? हम तो समझते हैं दिल 2 घंटे के बदले में 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा हो, मतलब दिल तो पूरी होती नहीं है। ये बाबा ने यही कहते हैं, दिल से हर समय यही निकलता है, ऐसा बाबा। और इसलिए बाबा ने क्या कहा, हाँ, कलयुग में ऐसी चीज मिले, हम बाबा से मिलना हो जाए, ये कितना भाग्य है। हमें अपने भाग्य के ऊपर नाज होना चाहिए। वो बाबा सिखाते हैं कि देखो, आप बच्चों का जो मिलते हैं, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, 600-700 करोड़ लोग हैं, इसमें से बाबा के 10-12 लाख मनुष्य जो भी हो गए, वही बाबा को सन्मुख में मिल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, या तो TV आदि में देख सकते हैं। बाकी को तो ड्रामा के अंदर उनको परमात्मा से साकार रूप में मिलने का पार्ट ही नहीं है। भक्ति भी बहुत करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु साकार में मिलने का पार्ट उनका नहीं है। और बाबा क्या कहते हैं, बाप बच्चों को देख खुश होते हैं, और बाप बच्चे दोनों जब खुश होकर मिलते हैं तो आप अनुभवी है। और यह साइंस वालों को बाप दादा निमित्त बनाने वाले देख दिल ही दिल में उनके भी गीत गाते हैं कि वाह बच्चे वाह, वाह बाप और बच्चे का मिलन सदा होता रहे। तभी बाबा ने इस प्रकार से साइंस दान की बातों का शुरुआत किया है कि साइंस वालों ने निमित्त बन करके ये साधन बनाए हैं। मैं सोच रहा था कल रात को मुरली के बाद कि साइंस वाले साधन तो बनाते हैं, तो उनका श्रेष्ठ भाग्य क्यों नहीं बनता है? साधन वो बनाते हैं, इस्तेमाल हम करते हैं, भाग्य किसका श्रेष्ठ बनता है? हम लोगों का श्रेष्ठ बनता है, उनका नहीं बनता है। कारण क्या है? साधन तो साइंस वाले बनाते हैं, परंतु उस साधन से वैज्ञानिक लोग साधना नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है, आप सबको क्या लगता है मालूम नहीं है, परंतु साधन बनाने के बाद भी उनका भाग्य बनता नहीं है। सबसे सत्युग में आएंगे, आपको मालूम रहे 84-85 की बात, 83-84 की बात है। मैं यहाँ और उषा यहाँ आबू में आए थे, बाबा से मिल रहे थे, तो बाबा ने हमको हम दोनों को प्रोग्राम दिया कि आप दोनों को यूरोप जा करके यूरोप के वैज्ञानिक साइंटिस्ट जो है उसकी सेवा करनी है। तब तक सब कईयों के मन में ये भावना थी और मेरे मन में भी यही भावना थी कि हम साइंस वालों की सेवा क्यों करें, साइंस तो विनाश के लिए, विनाश होगा, परमात्मा उनको प्रेरणा दे रहा है विनाश करने के लिए निमित्त है, तो इनकी सेवा करने की क्या जरूरत है, साइंस तो सत्युग में आएगा नहीं। ऐसी ऐसी हमारी सब में दिल में भावनाएं थी। तो जब बाबा ने कहा कि आपको यूरोप की सेवा के लिए, वहाँ के साइंटिस्ट की सेवा के लिए जाना है, तो मैंने बाबा को मना कर दिया। मैंने कहा बाबा, साइंटिस्ट की सेवा के पीछे टाइम क्यों बिगाड़े, क्योंकि उनका तो सत्युग में पार्ट नहीं है, तो उनकी सेवा का पार्ट, जब उनका पार्ट नहीं है तो क्यों उनके पीछे टाइम बिगाड़े। तो बाबा ने बहुत सरस एक सवाल मुझे पूछा कि सतयुग में आपका हेलीकॉप्टर कौन बनाएगा, सतयुग में आपका हेलीकॉप्टर कौन बनाएगा। मैंने कहा बाबा वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। हमको हेलीकॉप्टर बना करके देने के लिए साधन बनाने वाले का निमित्त आपको बनाना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए तो बाप आप बच्चों को भेज रहे हैं ताकि सतयुग में भी विज्ञान का पार्ट है। तो हम लोग तब तब हम लोग को विचार में पड़ गए कि सतयुग में भी विज्ञान का पार्ट है तो क्या हो गया। तब तक हम सबके दिल में यही भावना थी कि सतयुग में बाबा साइंस का हमारा हम बच्चों का ही कार्यक्रम है, सतयुग में साइंस का कार्यक्रम नहीं है। परंतु भाग्य बनता है उनका भी, क्योंकि वो साधन बना करके देते हैं। यहाँ पर साधन बना करके देते हैं, उसी प्रकार से यही वैज्ञानिक क्या होगा सतयुग में भी साधन बना करके देंगे, हेलीकॉप्टर बनाएंगे और भी कई साधन जो बनेंगे, पिकनिक के साधन आदि आदि जो साधन बनेंगे वो विज्ञान के जो वैज्ञानिक जो है वो जो यहाँ संगम युग में साधन बनाते हैं यही साधन बनाने का वरदान प्राप्त कर करके सतयुग में भी यही कारोबार करेंगे, साधन वो बनाएंगे। परंतु बात क्या है, सिर्फ साधन से भाग्य नहीं बनता है। अगर सिर्फ साधन से भाग्य बनता तो आप जानते हैं तीन प्रकार के साधन हैं, तन मन और धन, याद हो तो आपको सबको मालूम है, सबको मंजूर है ना। तीन प्रकार के साधन हैं, तन मन और धन। उसमें हम तन से करते हैं मन से करते हैं, परंतु धन के बाद में देखा जाए, धन के बारे में देखा जाए तो दुनिया में कहीं ऐसे करोड़ों पति है, अब्जोपति है, समझो अमेरिका का बिल गेट्स आदि जो भी है, मेक्सिको का एक भाई है कार्ल, ऐसे दूसरा और भी कई पैसे वाले हैं, भारत के भी अंदर कई पैसे वाले, उन सब का अगर धन से भाग्य बनता और ये धन साधना के रूप में इस्तेमाल करते तो उनका कितना अच्छा भाग्य बनता। परंतु वो धन से भाग्य नहीं बनाते, उससे साधना नहीं करते, उसको सफल नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी तन मन धन के रूप में जो भी है, सबसे श्रेष्ठ तन है, उसके बाद मन है और उसके बाद धन है, इनको हम सेवा में सफल करते हैं। सफल करते हैं इतना है, उससे ही प्राप्ति होती है। मैंने कई बार हमारे गोवर्धन लाल भाई का मिसाल दिया हुआ है, 63 की बात है। पहले गोवर्धन लाल भाई और उसकी युगल सीता बहन आदि उनके बच्चे बाबा के यज्ञ में समर्पित थे, परंतु फिर भारत आजाद हुआ उसके बाद जो है वो लौकिक दुनिया में गए और फिर बॉम्बे में रहते थे, हमारे साथ अच्छी दोस्ती थी। और फिर इसको एक हमने कई बार उसको कहा कि आप पैसा तो है आपके पास, थोड़ा सफल करो, थोड़ा बाबा की सेवा में लगो, कुछ भी करो। तो कहता था नहीं 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 मेरे पास पैसे है ना, ठीक है। तो फिर उसको हार्ट अटैक भी आया, उस हार्ट अटैक के बाद भी मैंने उनको कहा कि देखो बाबा आपको याद दिला रहे हैं कि सफल करो सफल करो सफल करो, तो भी उसने नहीं किया। दूसरा हार्ट अटैक आया, उसका मृत्यु हो गया। तो उस जमाने में बाबा जो है ऐसे महारथी भाई बहन को जो कहो इनको संदेशी के तन में नीचियों में भेजते थे, तो नीचे में आए तो रोने लगे। मैंने कहा गोवर्धन लाल भाई आप रोते क्यों हैं। बहुत सुंदर बात उसने कही कि मैं करोड़पति था, मैंने बाबा को कहा कि बाबा आप मेरा श्रेष्ठ भाग्य बनाएंगे ना। तो बाबा ने कहा उसको कि मैं तेरा श्रेष्ठ भाग्य क्यों बनाऊं, तो कहा मैं करोड़पति हूं। बाबा ने कहा नहीं तुम करोड़पति था, अब तेरा करोड़पति धन जो है उसके मारी तेरे बच्चे बन गए, बाप के भंडारे में कोई सफल नहीं हुआ, तुम्हारा भाग्य किसके आधार पर बनेगा। ये बाबा के जो महावाक्य है हम सबको याद रखने का है, हमारा भाग्य हम हमारा तन मन धन को कितना सफल करते हैं उसके आधार पर भाग्य बनते हैं। अगर सफल नहीं किया तो गोवर्धन लाल ने मुझे कहा रमेश भाई मैं करोड़पति से रोड़पति बन गया, ये याद रहे। ये सबके लिए हमारे में यहाँ कहीं ऐसे हमारा देवी परिवार में बहन भाई भी है करोड़पति है, करोड़पति क्या पैसे ज्यादा पैसे वाले भी है, परंतु अगर सफल नहीं किया तो गोवर्धन लाल ने जैसे बताया 63 में कि मैं करोड़पति से रोडपति बन गया। और अगर हम सफल करते हैं तो क्या हो जाएगा, हम रोडपति से करोड़पति बन सकते थे, करोड़पति से रोडपति और रोडपति से करोड़पति बनने का जो ड्रामा, विचित्र ड्रामा है, उसका कारण यही है कि हम साधनों को कितना उपयोग में लेते हैं और साधनों को कितने सफलतापूर्वक काम में करते हैं, अर्थात कितना हम अपना भाग्य बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। वैज्ञानिक लोग साधन बनाते हैं परंतु अपना भाग्य नहीं बनाते, इसलिए साधन बनाते हैं तो साधन बनाने का पार्ट उनका रहेगा, इसके कारण सतयुग में भी उनका साधन बनाने का पार्ट रहेगा। और इसके कारण क्या हो जाएगा, साधन बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु विश्व महाराजा में विश्व महारानी आदि के रूप का श्रेष्ठ भाग्य वो उनके तकदीर में नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हम बच्चों को भी अपना श्रेष्ठ तकदीर कैसे बने, भाग्य कैसे बने, उसके ऊपर सोचना चाहिए। ये तो क्या हो जाता है, तकदीर में नहीं होता है तो क्या होता है, मैं अभी की बात बताऊं, यह कारोबार की बातें हैं। एक बहन जो थी उसके पास एक मकान था, उस मकान को कई बार उसको कहा, हमने भी उनको कहा कि बहन आप ये मकान जीते जी समर्पित कर दो, तो कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मैंने व्हील बना दिया है और मेरे शरीर छूटने के बाद ये सफल होगा। मैंने कहा बहन किसने देखा कि आपके शरीर के बाद आपका मकान जो है सफल होगा, कहा नहीं 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 मैं जानती हूँ मेरे रिश्तेदारों को। मैंने बहन को कहा कि बहन जी आप अपने रिश्तेदारों को नहीं जानती है। और ऐसा ही हुआ, वास्तविकता में ऐसा ही हुआ, वो बहन ने शरीर छोड़ा, थोड़े दिन के बाद उसके एक रिश्तेदार ने डुप्लीकेट व्हील बना दिया, डुप्लीकेट व्हील बना दिया और कोर्ट में पेश किया कि मेरी ये जो रिश्तेदार जो है उसने शरीर छोड़ा हुआ है, उसकी सारी संपत्ति मेरी है। अब कोर्ट में केस चलेगा जो भी होगा, पर हकीकत यही है कि हम जीते जी जितना सफल कर सकते हैं इतना ही सर्वश्रेष्ठ रहता है। बाद में सफल हो या नहीं हो मालूम नहीं है। तो श्री बाबा ने भी हमारे द्वारा कई बार हमारी अकाउंट्स की टीचर्स की बहनों को कहा हुआ है कि आप बहनें अपने भाई बहनों को कहिए कि जितना सफल जीते जी कर सके उसके लिए बाबा जिम्मेदार है, बाकी आप शरीर छोड़े उसके बाद सफल होगा नहीं होगा इसकी गारंटी बाबा नहीं देता है। बाबा कहेंगे वो आपके हाथ में, बाबा ज्ञान दे सकता है परंतु पुरुषार्थ तो सफल करने का पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। इसलिए आप नक्की करिए कि हमारे पास साधन तो है और साधन के द्वारा हमने कितनी साधना किया और कितना सफल किया। साधना और सफलता ये दो मुख्य बिंदु है जिसके आधार पर हमारा भविष्य बनता है। सिर्फ साधनों के आधार पर भविष्य नहीं बनता, अगर सिर्फ साधनों के आधार पर भविष्य बनता तो बिल गेट्स और आदि आदि जो भी है वो सबका श्रेष्ठ भाग्य बन सकता। इसलिए धन से भाग्य बन सकता है तब जब धन को सफल करो, उसके द्वारा साधन बना करके, साधन द्वारा साधना और साधना के द्वारा सफलता, इस प्रकार की सीढ़ी है, साधन साधना और सफलता, जिसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं साधन साधना और उसके आधार पर जो साधन में लक्ष्य जो है वो रखना पड़ता है। लक्ष्य रखना है हमारे साधनों के द्वारा, हमारे पुरुषार्थ के द्वारा हमें संपूर्ण बनना है। ये संपूर्ण बनने की का जो लक्ष्य जो हम लोगों ने रखा हुआ है ये वैज्ञानिक लोग रखते नहीं है। वो लोग तो कहते हैं कि ठीक हमने साधन बना दिए, और इस साधनों के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक सतयुग के स्थापना के मददगार में भी साधन बनते हैं और दूसरा विनाश के लिए भी बनाते हैं साधन। आप देखिए अभी नॉर्थ कोरिया के वहां के जो राष्ट्र प्रमुख जो है उसने भी एक्सपेरिमेंट करके दिखाया हाइड्रोजन बॉम्ब का। तो इस प्रकार से साधन बनाते हैं और विनाश के भी साधन वो लोग बनाते हैं और स्थापना के भी साधन वो लोग बनाते हैं। दोनों पार्ट वैज्ञानिक लोगों का है, साधन बनाने का और साधन के द्वारा हम बच्चों के सुखी बाबा के मिलन की आदि आदि की बातों की भाषणा आ सकती है, और दूसरा विनाश के साधनों का। तो आप देख लीजिए विनाश के साधनों के द्वारा क्या होता है और स्थापना के साधन के द्वारा हम बच्चों को मदद उनके द्वारा मिलती है। बाबा ने बताया है कि वैज्ञानिक लोगों ने क्या किया, बाबा कहते हैं देखो बाबा ने क्या कहा है, मिलन का रास्ता बहुत सहज बना दिया है। मिलन का रास्ता आज एरोप्लेन आदि का कार बस ट्रेन आदि आदि के द्वारा कितना सहज बाबा से मिलने का साधन हो गया है। आप बाबा ने आगे कहा है कि अनेक साधन बन गए हैं, आप गिनती करेंगे कितने साधन जो है हमको मिल गए हैं। हमारे पास कहीं ऐसे हैं, यहाँ सुबह 5 बजे मुरली का क्लास चलता है, कहीं सेवा केंद्रों पर कहीं भाई घर में जो है सुबह 5 बजे का मुरली का क्लास सुबह में ही यहाँ से जो रिले होता है उसको पढ़ते हैं सुनते हैं, कई लोग जो है बाद में सुनते हैं। बाबा की मुरली सब जगह पर मिलती है, बाबा का क्लास जो है यहाँ जैसे अभी का भी क्लास जो है कई जगह पर पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा सबको सुनने में आता है। तो इस साधन के द्वारा साधना हो सकती है और इसलिए बाबा कहते हैं कि मिलन के रास्ते सहज रास्ते बहुत बना दिए हैं। तो जितने साधन के बने हुए हैं उसके आधार पर पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ हम नहीं करते तो क्या होगा, कई बच्चे और बाबा के भाई बहन बच्चे हमको मिलते कहते हैं बाबा बैठा है ना, बाबा बैठा है। मैं हर एक को कहता हूँ और आज भी आप सबके द्वारा कह रहा हूँ सबको, बाप बैठा है इसके कारण हमारा भाग्य नहीं बनेगा। हम पुरुषार्थ कितना करते हैं बाप की याद में रह करके, और पुरुषार्थ करने में बाप मदद कर सकता है, पर हम पुरुषार्थ ही नहीं करें। हम इसलिए स्लोगन है, आप सबको मालूम रहे स्लोगन है, मनुष्य यत्न तो ईश्वर कृपा, मनुष्य यत्न तो ईश्वर कृपा। मैंने एक बार साकार बाबा को कहा था बाबा ये मनुष्य यत्न की झंझट क्यों रखी हुई है, सबका सबको आप प्यार दे दो सबका भाग्य बना दो। बाबा ने कहा कि बच्चे ऐसा नहीं हो सकता है, कारण कि मैं आप बच्चे पुरुषार्थ नहीं करो ऐसे सबका भाग्य बना दो तो मुझे तो सबका भाग्य बनाना पड़े। फिर सत्युग और कलयुग में फर्क क्या रहेगा, क्योंकि यही सब भाग्य मैं बिना पुरुषार्थ करके आ जाएंगे तो सब सत्युग में भी आ जाएंगे। इसलिए एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, आप सबको पुरुषार्थ करना पड़ता है। आपको सहज पुरुषार्थ करके साधन बना दिए हैं, उसके आधार पर आपको पुरुषार्थ करना ही होगा तो ही आपका भाग्य बनेगा। तो इसलिए बाबा की कल की मुरली का सार यही है कि हमको अपना भाग्य बनाना है और उसके लिए सहज रास्ते विज्ञान के द्वारा कितने अच्छे मिल गए हैं, जो साधन मिल गए हैं उसका उपयोग हमें अपना पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए करना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ जिसको पिछले साल की लास्ट मुरली में बाबा ने कहा था, अभी विहंग मार्ग की सेवा करना चाहिए, विहंग मार्ग का पुरुषार्थ करना चाहिए। विहंग मार्ग के चलने की पुरुषार्थ है, दौड़ने का है, तीसरा विहंग मार्ग का है उड़ने का पुरुषार्थ जो है, तो उड़ने का पुरुषार्थ करेंगे तो ही श्रेष्ठ भाग्य बनेगा, ये ख्याल में रहे। बाबा ने कहा कि देखो विज्ञान के आधार पर क्या होता है, बाप सामने दिखाई भी देता है सुनने भी आता है, तो फिर से क्या होता है, बाप दादा भी बच्चों को देख कितने खुश होते हैं और क्या कहते हैं। वैज्ञानिक लोगों ने कलयुग में साधन तो बहुत अच्छे बनाए हैं, ये साधन क्या करता है, कलयुग में साधन तो बहुत अच्छे, ये साधन क्या करते हैं, तो इस साधन के द्वारा बाप सामने है ऐसी भाषणा भी ये साधन देता ही है। अब मुरली के बाद टेप रिकॉर्ड सुनते हैं, बाबा ने कल कहा भी है हाँ कि कैसेट द्वारा और कई साधनों के द्वारा बाद में बाप को देखते हैं, तो बाबा कहते हैं हाँ कि साधन तो सामने भाषण आती है, आप टेप रिकॉर्डर के द्वारा घर में जाकर के सुनेंगे बाबा की मुरलियाँ। कल कैसे रात को यहाँ रिकॉर्ड हुआ, कईयों ने जाकर के कैसेट खरीद किया सीडी खरीद किया होगा और फिर अपने सेंटरों पर अपने घरों में जाकर के उसको देखेंगे, तो बाबा कहते हैं कि सामने हम बाबा है हाँ टेप रिकॉर्डर के द्वारा या स्क्रीन के ऊपर देखते हैं, तो भाषणा तो आती है रूबरू जितनी भाषणा तो हो नहीं सकती है, रूबरू में यहाँ जितना देखा हाँ इतनी भाषणा तो टेप रिकॉर्डर आदि के द्वारा नहीं हो सकती है। फिर भी टेप रिकॉर्डर आदि जो बाबा ने बताया विज्ञान ने साधन बनाया उसके कारण क्या हो सकता है, फिर भी बाबा की सकल टेप रिकॉर्डर में या उसके द्वारा सीडीओ के द्वारा यदि देखेंगे तो बाप दादा की सकल नयन चयन मिलन यह सब संगम का वंडर है। ये सब हम बाप दादा के नयन चयन और सकल ये सब मिलन ये सब हम वीडियो के द्वारा साधनों के द्वारा देख सकते हैं और बाबा भी बच्चे भी इसको देख करके खुश होते हैं। और कई बच्चे बाबा के साथ इसको साधनों के द्वारा हम बाबा को देखते भी हैं, मिलने की खुशी भी मनाते हैं। और इसलिए क्या मन में रखते हैं, मधुबन चलो मधुबन चलो, सबके दिल में यही था ना, सब अपने टर्न का ध्यान रखते हैं। अभी जैसे कल मुन्नी बहन ने बताया ईस्टर्न जोन नेपाल और तमिलनाडु जोन, इस प्रकार से तीन जोन के बहन भाई इतने आए, तो सबके अंदर मालूम पड़ गया वो, जब से मालूम पड़ा कि हमारा ये टर्न है 12 फरवरी का, तब से मन में सबको था कि चलो मधुबन चले मधुबन चले मधुबन चले। तो इस प्रकार से बाबा भी कहते हैं कि बाप भी हर बच्चों को देख खुश होते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि बाप और बच्चों का ये मिलन विचित्र है, विचित्र है, आप समझ जाते हो क्यों विचित्र है। जब भी ऐसा दिन होता है तब हर बच्चा कोशिश करता है पहुंच जाए, लेकिन कलयुग है। बाबा ने कल संगमयुग की भी डेफिनेशन बताई, आगे आएगा, ये कलयुग है। और कलयुग में क्या होता है, कलयुग में सब सुख पूर्ण होते नहीं है, जो प्राप्ति करनी चाहिए सब सुख। अभी आने में कईयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो क्या होता है, कहीं नहीं आते हैं, क्या नहीं आ सकते तो छोड़ दो, नहीं है रिजर्वेशन मिला हम कैसे जाएंगे। कहीं फिर मेहनत करते हैं, जैसे कल अंबिका बहन ने बताया बेंगलोर से कहीं मद्रास जाकर के फिर बॉम्बे आकर के यहाँ आते हैं, कहीं डायरेक्ट नहीं मिलती है ट्रेन तो हैदराबाद जाकर के यहाँ आते हैं, कहीं जो है दिल्ली जाकर के फिर अबू आते हैं। इस प्रकार से कहीं अनेक प्रकार की मेहनत करते हैं, कहीं बसेस में आ जाते हैं, कहीं ट्रेन में आ जाते हैं, कहीं कार में आ जाते हैं, तो सबके हाथों में है पुरुषार्थ करके यहाँ कैसे पहुंचने का। फिर भी बाबा कहते हैं सब कलयुग में सब सुख पूर्ण नहीं होता है, होता है लेकिन मनुष्य जो चाहता है वह सब पूरा नहीं हो सकता। तो बाप दादा को भी सब सुनते हैं, ऐसे मिलन हो सकता है तो बाबा को अंदर खुशी होती है कि देखो बच्चों ने इतने साधनों के द्वारा बाप से मिलने का पुरुषार्थ किया। हरेक के दिल में बाबा फिर भी याद कराता है, हरेक के दिल में बाप की याद सदा रहती है। और बाबा सवाल पूछता है कि हरेक के दिल में याद सहज रहती है या मुश्किल रहती है, ये सवाल पूछा सबको कल। तो बाबा ने पूछा जो समझते हैं कि बाप की याद भूलना मुश्किल है वह हाथ उठाना, तो सबने हाथ उठा दिया कि हाँ हम बाबा को हमको पूरा ही याद है। तो बाबा ने कहा बाप की याद भूलना मुश्किल है, सबने कहा नहीं बाबा आपकी याद तो रहती ही है, तो इसलिए भूलना मुश्किल नहीं है। तो बाबा फिर दूसरा सवाल पूछा फिर क्या करते हो आप, फिर क्या करते हो आप, तो उसके जवाब में बाबा ने ही कहा दिल में ही समा देते हो, बाप को दिल में ही समा देते हो। और फिर क्या होता है, कहीं पुरुषार्थ करने की याद करने की मेहनत करने की बातें जो है वो दिल में समा देते हैं और कारण पुरुषार्थ नहीं होता है, ये भी हकीकत है। कहीं क्या करते हैं बाबा फिर बताते हैं, कहीं के दिल में याद आता है तो चुपचाप बैठे है अकेले है, लेकिन ऐसे ही बैठे है जैसे कोई सामने बात कर रहा है, अकेले कोई बैठे हुए हैं किसी को लगता है कि ये अकेला क्या करते हैं, परंतु कई बार कई हम बच्चे जो है ना बाप के साथ रूह रियान करते हैं, आपके बाप के जैसे बाप सामने हैं बाप के सामने बात करते हैं, इस प्रकार से बात करते हैं। तो इस कारण क्या होता है, बाबा ने कहा कि सामने बात करते हैं, क्यों, बाबा ने कहा कि ये मिलन का दिवस बहुत अमूल्य है, कल का दिन जो था 12 फरवरी वो बहुत अमूल्य है, उसके बाद अभी मार्च में 2 टर्न है बाबा से मिलने का, तो इसका इस समय का मूल्य समझना चाहिए कि ये समय अमूल्य समय है, बाप दादा का दिव्य अवतरण हो और बाबा से दिव्य मुलाकात हो। और इसलिए बाबा कहते हैं बाबा फिर भी साइंस वालों को थैंक्स देंगे, किसी भी साधन द्वारा बाप सामने आ जाए, शब्द सुनने में आए तो कितनी खुशी होती है। साधन विज्ञान ने बना दिया और किसी भी साधन के द्वारा बाप सामने आए, टेप रिकॉर्डर के द्वारा हो सकता है, अनेक साधन जो है मुरली के द्वारा होता है, टीवी के द्वारा होता है, पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा कल जिससे सारी मुरली रिलीज हुई, इस प्रकार से होता है। तो बाबा कहते हैं किसी भी साधन हो परंतु बाप दादा के शब्द सुनने में आ सकता है, कईयों को सामने चित्र भी आ जाते हैं। यह साधन मिला है तो जो सुन भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं, विज्ञान के साधनों के द्वारा बाबा को सुन भी सकते हैं और मिल भी सकते हैं। पहले क्या था, बाबा का मुरली का साधन जो नहीं था, टीवी आदि का नहीं था तो क्या था, बाबा का साधन जो है टेप रिकॉर्डर द्वारा सब जगह पर जाता था और टेप द्वारा सुनते थे तो बाप भी दिखाई पड़ता था, साधन के द्वारा बाबा के शब्द भी सुनाई पड़ते थे। अब वो टेप का जमाना गया, अभी तो डायरेक्ट सुनने में आता है, मुरली भी सुनते हैं, जो भी होता है कारोबार ये सुनते ही रहते हैं। तो इसलिए साधन के द्वारा साधना सहज हो चुकी है, परंतु आगे बाबा कहते भी है साधन के द्वारा साधना सहज हो चुकी है परंतु साधन के अंदर फंसना नहीं चाहिए, ये बाबा आगे बताते हैं। फिर बाबा ने कहा बहुत अच्छी एक बात कही है, सामने मुरली के बाबा सामने टेप रिकॉर्डर में हो, टीवी में हो, जो भी हो, जहां भी हो, परंतु क्या बात है, बाबा ने कहा है सबसे पहली बात है कि हमारे दिल में बाप इमर्ज होना चाहिए। सुनते रहे, दुनिया सारी सुन रही है, हमारे पीस ऑफ माइंड चैनल में ज्ञानी लोग भी सुनते हैं तो अज्ञानी लोग भी सुनते हैं, अज्ञानी लोग सुनते हैं उसके सामने बाप तो नहीं आता है, उसके सामने तो बातें जो होती है वही आती है। हम सबके सामने हम जो टेप आदि के द्वारा जो बाबा को देखते हैं तो क्या होता है, बाप इमर्ज सामने हो सकता है और इसलिए हमारा मिलन होता है, उनका मिलन नहीं होता है, और ये उनका मिलन नहीं होता है हमारा मिलन होता है। बाबा ने कहा है यह भी ड्रामा में नोंद है, सबका भाग्य नहीं बन सकता है, सबके पास साधन होते हुए भी सबका भाग्य सभी साधना नहीं कर सकते, इसके कारण बाबा कहते हैं इनका भी ड्रामा में नोंद है। बाबा साइंस वालों को बहुत बहुत याद करते हैं और बाबा उनके सजेशन देते हैं, हम बच्चे तो विज्ञान वाले को सजेशन देते हैं परंतु बाबा ने कल वैज्ञानिक लोगों को भी सजेशन दिया है, और भी कुछ नजदीक हो जाए, नजदीक का साधन बनाओ, बाबा को और भी कुछ नजदीक के देख सकते मिलन सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया और भी साधनों में सुधार होगा, परिवर्तन होगा, नए नए साधन बनते रहेंगे और उसके कारण हम बाप और बच्चों के बीच का मिलन का साधन सहज और ही हो जाएगा। और बाबा कहते हैं कि जैसे बाप भी कहते हैं साधन ऐसे बनाओ, इस प्रकार से बच्चे भी कितना योग लगा करके साइंस वालों के पीछे पड़ करके इन्वेंशन निकालते हैं। हम बच्चों को भी साइंस वालों को थैंक्स देना चाहिए और आपके साधनों के द्वारा हम बाप को मिल सकते हैं, इसके लिए उनको थैंक्स कहना चाहिए। और इसलिए बाबा आगे कहता है कोई न कोई साधन निकलता ही रहेगा, कोई न कोई साधन निकलता ही रहेगा, और उसमें बाबा ने एक हिंट दिया हुआ है। बाबा ने कहा है जिससे गरीब भी देख सके, साहूकार भी देखे, और सबसे सहज मिलन दिल का मिलन हो सके, गरीब भी मिल सके और साहूकार भी मिल सके। मेरे बाजू में ही करुणा भाई बैठे थे, इन्होंने कहा बाबा ने ये जो गरीब मिल सकते हैं इसका साधन क्या हो सकता है, भारत की 80% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, वहां पर ये जो पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा या टाटा स्काई के द्वारा या तो डिश टीवी के द्वारा हटवेश आदि के द्वारा वहां पर बाबा का संदेश नहीं पहुंचता है, 80% पॉपुलेशन जो है उसको दूरदर्शन के द्वारा ही बाबा का संदेश मिल सकता है। हम सब मेहनत कर रहे हैं कि दूरदर्शन के ऊपर बाप का कारोबार कैसे ज्यादा में ज्यादा अच्छे में अच्छा आ जाए। तो 80% जो बाबा ने कहा ना, गरीब भी देख सके, तो गरीब भी देख सके माना जो गांव में आदि में रहने वाले हैं वो भी बाप को देख सकते हैं, जहां पर टाटा स्काई आदि आदि नहीं पहुंच सकता है, सिर्फ दूरदर्शन ही पहुंच सकता है, उनको भी वैसे गरीब लोग जो है उसको बाबा का संदेश कैसे मिले, इसके लिए नए साधन, इसके लिए बाबा ये ईश्वरीय नई सेवा का इशारा दिया कि गरीब भी देख सके, ऐसे साधन ऐसा कारोबार हम बच्चों को करना है। तो ये बाबा ने कल नई ईश्वरीय सेवा का साधन बनाने के लिए कहा है कि आप नए साधन बनाइए ताकि गरीब लोग भी देख सके, गांव के लोग भी देख सके। तो इसके लिए ये हम सब जो भी यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी सुन रहे हैं, इन सब के लिए बाबा का कल संदेश है कि ऐसे साधन बनाओ जो गरीब भी देख सके और साहूकार भी देख सके। साहूकार तो देख सकते हैं, उनके पास टीवी आदि होता है, शहरों में रहते हैं, परंतु गांव में रहने वाले जो होते साधारण जो है उनको भी कैसे मिल सकता है साधन। इसके लिए जैसे हमारे यशवंत भाई मेहनत करते हैं रेडियो मधुबन के द्वारा, तो यहाँ के 200 किलोमीटर के रेडियस में सबको बाबा का संदेश रेडियो द्वारा सुनाई पड़ता है, बहुत ही अच्छा साधन बना हुआ है। तो कल बता रहे थे कि टीवी के द्वारा जैसे साधन हम बना रहे हैं, इस प्रकार से रेडियो के द्वारा भी कारोबार करना चाहिए। आज सुबह भी हमको हरिलाल भाई मिले थे, वो कहते थे कि रेडियो के द्वारा भी सेवा का कारोबार बढ़ाना चाहिए, इसका प्रसारत होना चाहिए। तो रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा आदि जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसके द्वारा गरीब लोगों की भी सेवा कैसे हो सकती है उसका पुरुषार्थ करना है। सेवा के फील्ड बहुत बड़ा है, परंतु क्या होता है हम लोग नई सेवा करने के लिए डरते हैं, या तो नई साधन बनाने के लिए हमारा में हिम्मत नहीं है, या तो मालूम नहीं क्या होता है। इसके कारण क्या होता है, जो ट्रेडिशनल साधन जो है ना, और ट्रेडिशनल बने हुए साधन जो है, जो माध्यम जो है, इसके कारण प्रॉब्लम होता है कि हमारा सेंटर, हमारी हृदय, ये सब बातों में हम फंस जाते हैं। बाकी तो सेवा के साधन इतने बन सकते हैं जिसके द्वारा सारी दुनिया के ऊपर हम संदेश दे सकते हैं। मुख्य बात यही है हम साधन कैसे इस्तेमाल करते हैं और साधना कैसे करते हैं। साधना अच्छी करें, साधन अच्छे मिले, तो गरीब लोगों की भी सेवा करने का लक्ष्य कल बाबा ने दिया हुआ है, ये याद रहे सबको। और गरीब लोगों की सेवा हम कैसे कर सकते हैं, फिर बाबा ने कहा आज सुबह उठे तो जब तक बाबा मिले तब तक आपके इस दर्पण में क्या देखा, क्या क्या आया था। घड़ी घड़ी अभी जाए बाबा आएगा, बाबा मुरली चलाएंगा, यही याद होता है ना। तो बाबा साइंस वालों को मुबारक देते हैं जो कैसे भी इन्वेंशन निकाली है और यहाँ तक सब पहुँच गए हैं। सुबह से ये इंतजार में थे बाबा को मिलने का, क्या क्या करते थे। तो इसके लिए बाबा फिर से साइंस वालों को मुबारक देते हैं कि बाप के सामने और आप बाप के सामने साइंस के साधनों के द्वारा ही आ सके। आप देखिए लंदन वाले जो है, लंदन से 8 घंटे में अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। हमारे तमिलनाडु के या तो ईस्टर्न जोन में खोने में रहने वाले भी जो है, मैं पूछता हूँ कईयों को तो कहते हैं आने में 48 आवर्स लगता है, कईयों को 36 घंटे लगते हैं। और लंदन वाले क्या करते हैं, एरोप्लेन के साधन के द्वारा आ जाते हैं, हाँ तो आधा घंटे 8 घंटे में आ जाते हैं। अब तो अमेरिका से भी नॉन स्टॉप डायरेक्ट फ्लाइट हो गई है, 15-16 घंटा, कहीं तो फ्लाइट जो न्यूयॉर्क से बॉम्बे आती है 13 घंटे में आ जाती है। तो इस प्रकार से साधन अच्छे अच्छे निकलते रहे, स्पीड ज़्यादा बढ़ती रहती है और उसके कारण सहज रूप में यहाँ आ सकते हैं। तो इस प्रकार से सहज रूप में साधन जो मिले हैं उसका मैं हमेशा ही कहता हूँ एक बात, ये हमारे सभी भाई बहनों के लिए मेरा ये खास नम्र निवेदन है कि हमारे साधन, हमारा धन, हमारा उत्कर्ष, हमारा पुरुषार्थ करने में लगाना, यही सबसे बड़े में बड़ी, सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ सेवा है। हमारे पास साधन हो, हमारे पास धन हो, सब कुछ हो, परंतु हम सेवा में नहीं लगाएंगे, सफल नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य कैसे बनेगा। इसलिए सबको हमारी विनम्र विनती है कि सदा ये ध्यान रखें कि साधन के द्वारा, हमारे तन के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, हमारे धन के द्वारा हमारा भाग्य श्रेष्ठ कैसे बने, जिसके सदा ही चिंता रहनी चाहिए, पुरुषार्थ करने की लगन रहनी चाहिए, ये बात अवश्य ही होनी चाहिए। ये बात सबके दिल पर रहे तो अच्छा है। और इसलिए मैं साकार बाबा की एक मुरली की बात सदा सबको सुनाता हूँ। बाबा की मुरली बहुत सुंदर बात बाबा का, ओम शांति। मैं आप सबको ये कह रहा था, एक साकार मुरली का ये पॉइंट मुझे हमेशा ही याद रहता है। बाबा ने उसमें कहा है साकार मुरली में कि अगर किसी भी व्यक्ति के, किसी भी परिवार के पास उस परिवार का या उस व्यक्ति का वर्तमान का जीवन का कारोबार, जीवन की पालना करने का धन पर्याप्त है, तो फिर उसको भविष्य की कमाई के लिए ही ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहिए। तो देखा गया ऐसा है कि वर्तमान के समस्याओं में ही हम इतने व्यस्त रहते हैं कि वर्तमान के समस्याओं से ऊपर नहीं जा सकते, और इसलिए भविष्य की कमाई के लिए जितना पुरुषार्थ करना चाहिए, जितना हमारा भाग्य हमको श्रेष्ठ बनाना चाहिए, वो बनाते नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा ने योग की प्रदर्शनी का लास्ट चित्र बना करके भेजा था और उसमें लास्ट में लिखा था कि आपका भाग्य आपके हाथों में है, आप अपने भाग्य के मास्टर विधाता हो, और आपका भाग्य न कोई और बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। तो इसलिए हमारा भाग्य हमारे हाथों में है, हमारे भाग्य का हम भाग्य विधाता है। हमारा भाग्य परमात्मा भी नहीं बना सकता है, परमात्मा ज्ञान दे सकता है, पुरुषार्थ का रास्ता बता सकता है, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। ये बात सदा ही सबके ध्यान में रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। चाइनीज गीता के बारे में मैंने बताया था, चाइनीज गीता में बहुत अच्छी एक बात लिखी हुई है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन की गीता है ना, ऐसे कई जगह पर अलग बातें लिखी हुई है। चाइनीज गीता में हर एक माँ बाप के लिए एक संदेश है कि आप अपने बच्चों के भाग्य की चिंता नहीं करो। हर एक बच्चा अपना भाग्य लिखा करके जन्म लेता है, इसलिए हर एक बच्चे का अपना भाग्य बना हुआ है। आप अपना भाग्य बनाने की चिंता करो, अपने बच्चों का भाग्य, औरों का भाग्य, कितने लोगों का भाग्य अगर आप चिंता करेंगे तो क्या फायदा होगा। अभी अखबार में एक जोक आई थी, जोक के रूप में कहता हूँ। एक बहन ने दूसरी बहन को कहा, मेरा पति मेरे को बहुत प्यार करता है और कहता है कि 7 जन्म तक तुम ही मुझे पत्नी के रूप में मिलो, मुझे ऐसे तो खुशी होगी। तो उसकी सखी कहती है, अरे रे रे रे, तुम तो बहुत भोली हैं। तो क्या, क्यों? क्या 7 जन्म के बाद 8वें जन्म में उसने और किसी को ढूंढ के रखा होगा। तो इस प्रकार से देखो कौन कि हम लोग कितनी चिंता करते हैं, सात जन्म के बाद आठवें जन्म के बाद ऐसे करते, ऐसे ही कहीं अपने बच्चों के क्या बच्चों के इस प्रकार से बनाने के प्रयत्न का पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। और अपना पुरुषार्थ, अपना भाग्य बनाने का पुरुषार्थ जितना करना चाहिए माफ करना, इतना हम नहीं करते हैं, ये वास्तविकता है। 80% भाग्य भाई बहन जो है वर्तमान का अंदर, वर्तमान समय के अंदर आने वाले भविष्य का भाग्य बनाने में अपना समय जितना देना चाहिए देते हैं, परंतु जितना देना चाहिए इतना नहीं देते हैं। ज्ञान के अंदर तीन चार बातें हैं, हम बाबा कहते हैं कि आप प्रजा भी बन सकते हैं, साहूकार प्रजा भी बन सकते हैं, राजा भी बन सकते हैं, महाराजा भी बन सकते हैं और विश्व महाराजा भी बन सकते हैं। साहूकार तक पहुँच सकते हैं, परंतु साहूकार से आगे का पुरुषार्थ तो हमें ही तीव्रता के आधार पर करना होगा। ये बहुत गुह्य बातें हैं पुरुषार्थ की, कभी उसके ऊपर टाइम मिलेगा तो हम चर्चा करेंगे कि गुह्य पुरुषार्थ में तीव्रता कैसे आवे। बाबा कहते सब यहाँ पर पहुँच तो गए हैं, जो आप बाप के सामने और बाप आपके सामने ही हैं, फिर भी तो इतना तो हो गया। फिर बाबा कहते फिर भी ये छोटा सा मिलन है, लेकिन फिर भी है तो सही ना। फिर बाप कहते हैं कि बाप भी याद करते हैं बच्चों को, और बच्चों से बच्चों को भी बाप याद करते हैं, और बच्चों को बाप से बाप की याद का रिस्पॉन्ड भी मिलता है। फिर बाबा कहते हैं बाप को याद तो सब करते हैं, कोई भी होगा ना, अनजान भी होगा, छोटा बच्चा भी होगा, जो आज फोटो को देखकर कहेंगे बाबा कैसे मुरली चलाएंगे, कैसे मुरली चलाता होगा। हाँ, तो छोटा बच्चा भी समझ गया है आज की दुनिया के अंदर बाबा का फोटो आदि को देख करके। और फिर बाबा ने क्या कहा कि सारे पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य क्या है, बाबा कहते हैं ये सारा दिल का लगाव है, दिल से बाबा को याद करना पड़ेगा। बाकी कहीं जो है ना मशीन के माफी मैकेनिकल रूप में, जैसे हम लोग बचपन में थे ना, हमारी माता कहती थी कि बाबा के याद, परमात्मा के याद में माला फिराओ, हम फटफट फटफट ऐसे फिरा देते थे। अब माला फिराने का अंदर लक्ष्य था बाप को, ये परमात्मा को याद करने का नहीं था, ऐसा हम छोटे बचपन में करते थे। ऐसे आज भी कई ऐसे बच्चे हैं बाबा को दिल से याद नहीं करते, मशीन के माफी याद करते हैं। इसलिए चेक करना चाहिए हमारी याद क्या है, जो बाबा ने कल कहा कि दिल का लगाव होना चाहिए। उसमें क्या होगा, बाबा शब्द कहते सुनते देखते, बाबा शब्द कहते सुनते और देखते, बाबा 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 बच्चों में बाबा समा जाता है। हम बाबा बाबा कहने से क्या होना चाहिए, सुनते फिर कहते सुनते और देखते, ये तीनों बातें ही हो सकती है, और तो कोई हो नहीं सकती है। कहते हैं सुनते हैं और देखते हैं, बाबा 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 बच्चों में और बाप बच्चों बाबा में समा जाते हैं। और देखो बच्चे बाबा कहते हैं, देखो बच्चों कितनी कोशिश करते हैं और कहाँ से कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर बहुत सुंदर महावाक्य कहा है जिसमें अंदर कलयुग की भी डेफिनेशन, संगम युग की भी डेफिनेशन है, बाप और बच्चों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन। अभी तक बाप 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 उस प्रकार से आता रहता है, अब पहली बार बाप कौन है, पहली बार बाप कौन है वो बाबा स्पष्ट करते हैं कि यह आत्मा और परमात्मा का मिलन। बाप और बच्चों का मिलन तो साधारण हो जाए, कोई दुनिया में भी लौकिक घरों में भी हो सकता है, कईयों के बच्चे यहाँ बैठे होंगे या तो घर में बैठे होंगे, वो याद भी आते रहते हैं, तो बाप और बच्चों का मिलन तो बहुत कॉमन बात है। परंतु आत्मा और परमात्मा का मिलन कितना अमूल्य है, आत्मा और परमात्मा का। बाबा ने पहली बार कई बारों के बाद समय के बाद मुरली के अंदर बाबा ने अपना परिचय परमात्मा के रूप में दिया, नहीं तो बाप के रूप में देता रहता है। कल बाबा ने अपना परिचय परमात्मा के रूप में दिया और उसके कारण क्या कहा, यह अमूल्य मिलन के समय को संगम युग कहा जाता है। संगम युग की एक नई परिभाषा, नई डेफिनेशन, हमारे जो भी भाषण करने वाले जो होंगे ना, उन सबको हमें याद दिलाता हूँ कि कल बाबा ने संगम युग की एक नई डेफिनेशन दिया कि यह अमूल्य मिलन के समय को संगम युग कहा जाता है। कौन सा अमूल्य मिलन? बाप और बेटे बच्चों का मिलन जो है, आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय जो है, यह अमूल्य है। और इस अमूल्य मिलन के समय को संगम युग कहा जाता है। और यह अमूल्य मिलन जो है, यह संगम युग जो है, बाबा कहते हैं इसको, इस युग की महिमा करो तो नयन कितने गीले हो जाते हैं, नयन कितने गीले हो जाते हैं, परंतु क्या करें, कईयों का दिल में बाबा के पास प्यार भी है पर तो नयन गीले नहीं होते हैं। बाबा ने कल कहा कि प्रभु मिलन में नयन भी गीले हो जाए तो अर्जा नहीं है। एक है आंसू दुख के और दूसरे आंसू है सुख के। जानकी दादी ने क्या एक बार क्लास कराया था, दुख के आंसू क्या है और सुख के आंसू क्या है, और उसमें दादी ने कहा था सुख के आंसू तो मोती है, मोती, और इसलिए सुख के आंसू आ जावे तो उसमें डरने की बात नहीं है, बहुत अच्छा है। तो बाबा ने फिर आगे बताया है, बाबा देखो अभी बताते परीक्षा भी बाबा लेगा, तो बाबा परीक्षा इम्तिहान लेगा, परीक्षा लेगा। आप सबको बाबा ने पहले से ही वार्निंग दे दिया है कल की मुरली का। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए कि कल बाबा के मुरली में हमको एक वार्निंग मिल गई है कि बाबा इम्तिहान लेगा, और यह इम्तिहान बाबा अचानक लेगा, पहले से बता करके नहीं लेगा। और क्या पूछेंगे इसके अंदर, जैसे बाबा ने एक मुरली में कहा हुआ है, आखिर की परीक्षा जो है उसके अंदर दो ही प्रश्न आपके सामने आएगा, कितने तक नष्टो मोहा बने हो और कितने तक स्मृति लब्धवा बने हो। कल इसके हिसाब से बाबा ने कहते हैं कि बाबा के परिमतान में क्या पूछेगा कि सारे दिन में कितना टाइम बाप की याद में रहते हो। अगर 24 घंटा तो होता ही है, उसमें बाबा कहते हैं कि सारे दिन में बाप की याद में कितना टाइम देते हो, क्योंकि बाप की याद बहुत प्यारी है, यह तो सभी कहते हैं। और सभी कहते हैं हम करेंगे करेंगे करेंगे, यह तो ठीक है, परंतु दिल के अंदर बाप के लिए सबका याद और प्यार होना ही चाहिए। और इसलिए बाबा ने कहा, रिजल्ट भी बाबा बता देते हैं। बाबा कहते हैं कितना समय निकाल करके बच्चे बाप की याद में बैठते हैं, कैसे बैठते हैं, याद में बैठते हैं और फिर कैसे बैठते हैं। हम बाबा ने एक साकार अव्यक्त मुरली में बताया हुआ है, बाबा 4 बजे निकलते हैं और जहाँ जहाँ अमृत वेले निकलते हैं देखते हैं अनेक प्रकार के पोजिशन में बच्चे बैठते हैं, कहीं झुटका योग करते हैं, कोई निद्रा योग करते हैं, कोई बाबा को याद करते हैं, क्या क्या करते हैं, अनेक प्रकार के योग की विधि बाबा ने बताई है, कोई निद्रा योग भी करते हैं, कहीं झुटका योग भी करते हैं। हमारे बॉम्बे में गांधी सेंटर में मैं बैठा था, एक भाई जो है ना झुटका खा रहा था, तो मैंने उसको कहा अरे भाई साहब ठीक बैठो, उसने कहा क्यों, मैंने कहा कि आप झुटका खाते हो। वो भाई ने मुझे बहुत अच्छा कहा, तब से मैंने किसी को सावधान करने का धंधा छोड़ दिया है। वो भाई ने कहा मैं झुटका नहीं खाता, मैं तो बाबा के याद के अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलता था। उसने फिर मुझे ज्ञान दिया, मैंने कहा नहीं मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप झुटके खा रहे हो, तो उसने मुझे ज्ञान दिया, रमेश भाई वो तो आपकी दृष्टि ऐसी थी, आपकी दृष्टि वैसी थी इसके कारण मैं अतीन्द्रिय सुख के झूले में ऐसे झूलता था, उसको आपको झुटका लगा। मैंने कहा मैं क्या करूं, मुझे तो लगा आप झुटका खा रहे हो, इसलिए मैं आपको सावधान किया कि भाई साहब झुटका मत खाओ, बाबा की मुरली सुनो। परंतु क्या होता है, हम कहीं हमारे अनुभवी भाई बहन बैठे हुए हैं। मैंने गुरीदा दादी को एक बार मैंने कहा था, दादी आपको भी बाबा के पास जाने में 5-6 मिनट लगती है, और शरीर बनने में, अब बाप के पास जाने में। हमारे पास कई ऐसे भाई बहने हैं जो क्लास के अंत में 3 मिनट का योग लगता, योग का गीत बजता है ना, इस 3 मिनट के योग के अंदर भी अशरीर बन जाते हैं, 3 मिनट के योग में भी अशरीरी बन जाते हैं और झूठ के खाने शुरू कर देते। 3 मिनट में बाबा के पास पहुंच जाते हैं। कितना तीव्र पुरुषार्थी है कि झूठ के खा करके बाबा के पास पहुंच जाए। तो बाबा के पास पहुंचते होंगे नहीं पहुंचते होंगे मुझे मालूम नहीं है, आप सब अनुभवी है हमारे। कहीं बहन भाई योग करते हैं, एक बार बाबा ने दादी जानकी ने क्लास में भी कहा, एक बहन यहाँ बैठकर नींद कर रही थी, तो बाबा दादी जानकी ने कहा कि उस बहन को उठाओ, क्लास के अंदर बाबा को याद करना है या नींद करना है। तो कहीं ऐसे यहाँ बैठे बैठे भी नींद करते होंगे, कोई स्थूल में करते होंगे, कोई सूक्ष्म में करते होंगे। कौन याद में बैठते कैसे बैठते, वह हर एक की हिस्ट्री, हम कैसे बैठते कैसा करते योग करते हर एक की हिस्ट्री खुद जाने और बाप जाने। हर एक की हिस्ट्री, हम कैसे बैठते हैं वो बाप हम भी जानते हैं और बाप भी हम बच्चों को सबको देख रहे हैं। ये बाबा ने कल याद कराया, हर एक की हिस्ट्री खुद जाने या बाप जाने। फिर बाबा ने लौकिक दुनिया के हिसाब से पूछा, सबकी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना, तो हाथ उठाओ। तो सबने हाथ उठाया तो बाबा ने कहा कि सबके हाथ इतने ऊंचे उठे हुए देख करके कितनी बाप को खुशी होती है, और ये सीन बहुत अच्छा लगता है। फिर बाबा ने याद कराया, सबसे अच्छी याद तो दिल की याद है, दिल की याद ही सबसे अच्छे में अच्छी है। दिल में बाबा बाबा ही याद रहे, चलते फिरते कुछ भी करते, इसलिए बाप को दिल में अगर नहीं भूल जाते तो क्या होता है, बाप की याद दिल में नहीं रहती है। बच्चों को भी दिल नहीं रहती है, बच्चे के भी दिल नहीं रहती है तो ड्रामा मिलन का। फिर भी बाबा ने कहा याद दिन में नहीं रहती है तो भी बाबा ने कहा विज्ञान ने साधन अच्छे बना दिए हैं, साइंस ने इस समय मिलन का रास्ता बहुत अच्छा बनाया है। और बाबा एक एग्जांपल भी देते हैं कि छोटी कैसेट रख दो, जब चाहे तब आवाज सुनो। कैसेट के द्वारा तो आप जानते हैं टेप रिकॉर्ड के अंदर जो कैसेट होती है उसके द्वारा आवाज ही सुन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं साइंस ने कमाल किया है, सुनने का भी और देखने का भी सब साधन साइंस ने बना दिए। फिर भी साधन बने हुए सब कुछ होते हुए भी बाबा याद दिलाते हैं, तो लेकिन बाप सदा कहते हैं यह सब अल्पकाल के साधन हैं। विज्ञान के द्वारा जो भी साधन जो मिले हुए हैं वो अल्पकाल के साधन हैं, लेकिन सदा आपके साथ रहे, सदा आपके साथ रहे वह है दिल। अर्थात दिल में बाबा को याद करो, इमेज रहे इसकी प्रैक्टिस करो। ऐसा कर करके बाबा ने मुरली समाप्त किया। 8:55 हो गई, मतलब बराबर 45 मिनट्स में बाबा ने मुरली चलाई। बाबा ने फिर कहा आज कौन सा तरफ से आया हुआ, ऐसे करके बाबा ने टॉपिक चेंज किया। 45 मिनट्स बाबा ने मुरली चलाई 8:55 को, फिर 8:55 से 9 बजे तक ईस्टर्न जोन के साथ बात किया, फिर 9 बजे से 9:05 तक विदेशियों के साथ बात किया, और इसके बाद 9:05 को बाबा का स्टेज का कार्यक्रम चला। ईस्टर्न जोन के बारे में भी बाबा ने बताया, ईस्टर्न जोन आसाम बंगाल बिहार उड़ीसा नेपाल तमिलनाडु जोन के 18,000 आए हैं टोटल, 23,000 सभा में थे। अच्छा है साइंस वालों ने अपना उल्लेना उतार कर जो दे सकते हैं देते हैं, लेकिन सबके सहज तरीका है याद बिना साधन के दिल में आ जाए। परमात्मा की याद साधनों के द्वारा आवे फिर भी वो तो साधन के द्वारा आती है तो थोड़ी वो इमेच्योर होती है या तो आर्टिफिशियल होती है। दिल से याद करते हैं तो अच्छे में अच्छी वही याद है। और दिल से याद करेंगे तो क्या होगा, बाबा ने कहा कोई इसको याद को दिल से निकालना चाहे तो निकल नहीं सकती है। और फिर बाबा के साधन इतने हैं जो कमाल साइंस की है, और ऐसे टाइम पर साइंस के साधन निकले हुए, संगम युग के अंदर ही ये सारे ही साधन रहे। कहाँ था ये टेप रिकॉर्डर आदि, कहाँ था ये, हम कैसेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहाँ से इंटरनेट के द्वारा कहाँ कहाँ से जाता है, कैसे कैसे जाता है, ये सब यही पिछले 100 साल के अंदर ही बने हुए हैं। इसलिए इस ऐसे टाइम पर साइंस का साधन हुआ है जो बच्चे कहाँ पे भी हो, विलायत में भी हो या यहाँ भी हो, सब साधनों से मिलन बना सकते हैं। कल के मुरली बाबा की विलायत आदि सब जगह पर लोग सुनते होंगे, बाबा उसको याद करते हैं। विलायत में भी हो, कहाँ पे भी हो, ये साधन से बाप से मिलन बना सकते हैं। तो संगम युग संगम पर सिर्फ बाप का साथ नहीं मिलता है, लेकिन साधन जो है उनका भी बहुत साथ मिलता है। बाप का तो साथ मिलता है, पर साधन के द्वारा बाप का साथ सहज मिलता है। और इसलिए बाबा फिर कहते हैं, मिलने के लिए, बाप से मिलने के लिए कितने साइंस ने साधन बनाए हैं, और उसको भी याद करना पड़ेगा, और इसके आधार पर नक्की करेंगे हमारे पास कितने साधन हैं। यह संगम पर बाप और बच्चों के मिलन के साधन भी कम नहीं है, बाप से मिलने के लिए साधन कोई कम नहीं है। इसलिए साइंस को भी कहेंगे हमारे मिलन के निमित्त साइंस बनी हुई है। ये महावाक्य याद रहे, विज्ञान किसके लिए बना हुआ है, विज्ञान के साधन किसके लिए बना हुआ है, हमारे लिए बना हुआ है। हाँ, मिलन बाबा के साथ मिलन मनाने के लिए ये साधन बने हैं। और फिर से मैं याद कराता हूँ, साधन तो बने, साधन बनाने वाले का भाग्य नहीं बनता है, कारण उस साधन के द्वारा साधना नहीं होती है, और हम वो साधन खरीद करते हैं या तो इस्तेमाल करते हैं, और इसके द्वारा साधना करके पुरुषार्थ करते हैं, और पुरुषार्थ करके आगे बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो ये साधन के साथ साथ साधना की बहुत जरूरत है। भले पैसा चाहिए, परंतु दूर बैठे भी मिलन हो सकता है। पैसा नहीं होता है तो वहां बैठे बैठे भी, दूर बैठे भी देख सकते हैं बाबा, चाहे कुछ भी काम करके पैसा भी इकट्ठा करते, क्या क्या कर रहे हैं। एक भाई ने मुझे बताया कि विदेश के भाई ने मुझे बताया था, हम जैसे आबू जाते अपने घर अपने देश, वहां जाने से पहला काम यही करते हैं कि हर महीने हम बाबा से मिलने के लिए प्लेन आदि में जाना पड़ेगा, उसका खर्चे के लिए सेविंग करना शुरू करते हैं। एक साल की सेविंग के द्वारा कहीं ऐसे है बेचारे, सारा साल मेहनत करते सेविंग करते रहते हैं, तब यहाँ आ सकते हैं। इन्हों का भी जीवन पुरुषार्थ देखो कितना प्यारा है, कितने दूर दूर से आते हैं। यहाँ क्राइस्ट चर्च है न्यूजीलैंड के आगे, वो इतना दूर है सबसे दूर, और यहाँ पर अमेरिका में चिली आदि जो है वो कितना दूर है, वहाँ वहाँ से लोग यहाँ आकर आके बाबा से मिलते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं, हाँ, कुछ भी काम करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और बाप से मिलन बनाने के लिए आते हैं। फिर मुन्नी बहन ने बताया, डबल विदेशी जो है 60 देशों से आए हैं, 700 भाई बहने हैं। ये बाबा ने 9 बजे स्टार्ट किया बताने का। फिर बाबा कहते हैं कि फिर भी यहाँ वहां से मिलने के लिए अच्छा है, यहाँ पहुंच तो गए। बाप दादा भी खुश होते हैं कि बच्चे पैसा इकट्ठा कर करके आते हैं। एक तो उन्हों की कमाल बहुत अच्छी है, बाप सुनता भी है कि कैसे बच्चे पैसा इकट्ठा करके यहाँ आते हैं। और दूसरी बात क्या है बाबा ने, एक तो पैसा इकट्ठे करने की लगन है जिससे बाबा से मिलने के लिए आ सकते हैं, और दूसरी है दिल में लगन कितनी है, लगन के साथ साधन भी इकट्ठा करते हैं। कमाल तो उनकी है, क्योंकि पहले तो यहाँ आने के लिए टिकट की जरूरत पड़ती है। फिर भी एक बात में टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये क्या है, बाबा ने कहा है बाप के दिल में बच्चे और दिल की बात और बच्चों के दिल में बाप है, इसके लिए टिकट की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर क्या करते हैं, ठीक है, पैसा इकट्ठा करते रहते हैं और क्या करते हैं, बाबा कहते हैं बस इन दिनों की तारीख याद करते रहते, 12 फरवरी, 12 फरवरी, ऐसे अभी मार्च महीने में आएंगे, इसके लास्ट में 31 मार्च की भी आएगी, हाँ, जिसके बारे में अव्यक्त बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बाबा मिलन की लास्ट मिलन की टुबकी लगाने के लिए कई लोग आ जाएंगे। हाईएस्ट रश जो है, सबसे ज्यादा में ज्यादा रश लास्ट में ही होता है। तो इस प्रकार से देखो, अभी कितने दिन, दो टर्न रहे, मार्च के दो टर्न है वो रहे हुए हैं। उसके अंदर कौन कितना अपना भाग्य बना सकता है, कौन कितना जंप लगा सकता है, अपने हमारे हाथों में है। फिर बाबा ने दूसरी एक बात कही है, जितने बच्चे ज्यादा उतने बाप को खुशी भी ज्यादा होती है। बाबा को भी इतनी बड़ी सभा देख करके बाबा को भी खुशी होती है। और इसलिए बाबा कहते सभी को दिल से याद प्यार तो है ही, क्योंकि बाप के दिल में समाया हुआ है कौन है, बच्चे समाये हुए हैं। इसके कारण बाबा कहते खास जिस समय यहाँ मुरली चलते है उस समय पर देखो तो बाप दादा भी देख करके हर्षित होते हैं, कितना भरा भरा, ये इधर भरा हुआ था, बाहर पीछे में मैदान में बैठे हुए थे, हिस्ट्री हॉल में बैठे हुए थे, अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे, कहाँ कहाँ बाबा के बच्चे बैठे हुए थे। बच्चों को दुलने में भी मुरली भी है। बाबा ने फिर कहा है ये मुरली क्या है, एक डेफिनेशन दिया है, मुरली जो है ना वह भी एक खजाना है, ईश्वरीय कमाई प्राप्त करने का खजाना, सहज में सहज है तो यह मुरली है। और इसलिए क्या होता है, लौकिक दुनिया के अंदर भी कैसे भी सर्कमस्टेंसेस होते हैं, बाबा कहते हैं फिर भी हम बच्चे क्लास में सेंटर पर हम मुरली सुनने के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ भी जो दिल से पहुंचे हैं उन सबका सन्मुख मिलन हो गया, लेकिन सन्मुख मिलन तो हुआ, इस मिलन को अभी आगे बढ़ाते चलो। यहाँ मिले कल 2 घंटे मिले, परंतु इस मिलन की खुशी जो है, उसकी प्राप्ति है, हाँ, वो सारी उस मिलन की जो है बातें जो है उसको आगे बढ़ाते जाओ, जो जहाँ तक हो सके वहाँ तक इस मिलन की खुशी को बढ़ाते रहो। मिलन तो हुआ, परंतु मिलन से जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति बढ़ानी चाहिए। हाल तो भर गया है, बाबा कहते हैं बच्चों को देख करके बाप खुश होते हैं, जो आए हैं उन एक एक बच्चों को बाप का दिल से याद प्यार और रिटर्न में भी याद प्यार दे रहे हैं। इस प्रकार से बाबा ने याद प्यार दे करके मुरली समाप्त किया, मिलना समाप्त किया, और फिर शशि बहन ने अनाउंस किया दादियाँ सब स्टेज पर आ जाए। जानकी दादी से बाबा मिलते हैं, बाबा ने कहा मेहनत अच्छी की है, प्रकृति से भी अच्छी मेहनत की है, दादी ने शरीर अच्छा बना दिया है, तबीयत भी अच्छी बनी है। और दादी बहरन से आई, उस दिन रात को मैं मिलने के लिए गया तो हमारे हंसाबेन ने हमको कहा कि दादी विदेश जाती है तो ज़्यादा उमंग गुस्सा में आ जाती है, तबीयत अच्छी होकर के आती है, जो कल बाबा ने भी कहा। सभी आपको देखकर कितने अच्छे होते हैं, यह तो अच्छा है जो चल फिर करके तबीयत ठीक है, और फिर आयुष के हिसाब से भी तबीयत बहुत अच्छी है। फिर दादी ने बताया इब्राहिम की, वहाँ बहरीन में एक इब्राहिम करके भाई है, दादी जी ने मुझे बताया कि ये इब्राहिम भाई जो है ना वो दादी को ऐसा याद लगता है कि जो मोहम्मद पैगम्बर तो मुसलमान धर्म की स्थापना किया, उसके पहले इस्लाम धर्म की बात थी, इस्लाम धर्म जो कल संगम अपने सृष्टि चक्र के अंदर हमारे कल्प वृक्ष के अंदर से पहला जो अलग पत्ता निकला वो अब्राहम के द्वारा निकला, अब्राहम उसके बाद उसके अंदर मोसेस उसके बाद इसकी क्राइस्ट उसके बाद मोहम्मद पैगम्बर, इस प्रकार से वो अलग लाइन शुरू होगी, वो अलग लाइन की शुरुआत करने वाला अब्राहम था, इब्राहिम था, जिसको इब्राहिम भी कहते हैं, और जिसकी याद में अभी भी मुसलमान लोग बकरी ईद मनाते हैं। ये बकरी ईद का त्यौहार अब्राहम के साथ लगा हुआ है, जिसके साथ अब्राहम के साथ बकरी ईद का और इस्लाम धर्म की और मोसेस आदि सभी धर्मों का जो बाइफर्केशन हुआ, डिवीजन जो हुआ वो अब्राहम से होता है। तो दादी जानकी मानती है कि ये अब्राहम के आत्मा इस इब्राहिम के रूप में मिल रही है। उसका फोटो भी कल आए हुए थे, जिनके पास व्हाट्सएप आदि होता होगा उसके अंदर मालूम पड़ेगा। दादी बहरीन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आदि, एजुकेशन मिनिस्टर आदि को कैसे मिलते हैं, वहाँ की बहन जो है वो बहन सबको मिला रही है। वहाँ का एक खूबी यह है कि कोई भी अपने कैमरे से फोटो नहीं निकाल सकता बहरीन में, सरकार खुद फोटोग्राफ निकाल करके फोटोग्राफ हमको देती है, वही फोटोग्राफ को ईश्वरीय सेवा में लगाना पड़ता है। ये वहाँ का कानून बहुत विचित्र कानून है। बाबा ने कहा, फिर कहा कि एक दो के सहयोगी बनना बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने रिजल्ट बताया, मतलब अभी जो टोटली जो अभी सेवा चल रही है सभी का उसके प्रति अटेंशन ठीक है। विदेश का असर भारत में आता है और देश का असर विदेश में जाता है, एक दूसरे के देश और विदेश एक दूसरे के अच्छे मददगार बन रहे हैं। फिर मोहिनी बहन से बात किया, फिर यशु दादी से बात किया, फिर हम तीन भाइयों से बात किया। सबसे पहले मेरे से बात किया, मेरे को पूछा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है। मैंने कहा बाबा स्वास्थ्य ठीक है। फिर बाबा ने खुशी का भाई सबको सब तीनों भाइयों को पूछा, सभी खुश है। फिर बाबा ने कहा सभी खा पी रहे हैं। तो मैंने बाबा को कहा हाँ सिर्फ खा पी नहीं रहे हैं, हम टोली भी खा रहे हैं। तो उसके जवाब में बाबा ने हमको कहा हाँ खाओ पियो, जरूरत नहीं है टोली खाओ, क्योंकि समझो मेरी तबीयत खराब है तो टोली कहाँ से खा सकेंगे। ऐसा कह करके बाबा ने हमारी बात को काट लिया कि टोली खाओ सब नहीं खा सकते तबीयत के कारण। फिर मैंने कहा बाबा हम सब भोग भी खाते हैं। उस पर बाबा खुश हो गए। बाबा ने कहा सभी को भोग तो ऑटोमेटिकली मिलता है, कौन कितना भी बीमार होगा तो भी एक चम्मच आधी चम्मच भी भोग तो स्वीकार करेगा ही। तो ये भी चार बातें, खाना पीना, टोली खाना और भोग स्वीकार करना। भोग तो बाबा ने भी कहा, भोग तो सबके पास बीमारी में भी पहुंच जाता है। फिर सबने कहा बाबा, हम लोगों ने कहा बाबा आपके यो साइंस के साधन के द्वारा बहुत अच्छा सेवा हो सकती है। बाबा ने फिर याद दिलाया लेकिन ऐसा बेफिक्र नहीं बनना, अच्छा है संभाल करो, अच्छा है साइंस के द्वारा सेवा करो संभाल करो, परंतु ज्यादा नहीं, बीच का जैसे होता है मध्यम मार्ग के द्वारा आगे बढ़ो, ऐसा बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा यहाँ तो बहुत बैठे हुए हैं, एक दूसरे के कारण तीर लग सकता है। फिर हमने कहा बाबा को, हम तीनों ने कहा बाबा को अभी तो संख्या बढ़ेंगी तो साधन भी बनाने पड़ेंगे। बाबा ने कहा कि साधन अपनाएंगे आएंगे तो वही बढ़ोतरी हो ही जाती है, कहाँ जाएंगे, यहाँ ही तो आएंगे। तो फिर हम लोगों ने कहा बाबा रहने के साधन भी बढ़ाने पड़ेंगे, देखो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, बाहर मैदान में बैठे हुए हैं इसके कारण। तो बाबा ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही। हम लोगों ने कहा ना बहुत बच्चे बाहर बैठे हुए, तो बाबा ने क्या उसमें कोई नुकसान हुआ, बाहर बैठे हुए बाहर से बैठ करके देख रहे हैं तो इसके कारण कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो हमने कहा नहीं बाबा नुकसान तो नहीं हुआ, परंतु साधन तो बढ़ाने पड़ेंगे। फिर मैंने बाबा को कहा अभी आपको आने का टर्न बढ़ाना पड़ेगा, आप सबकी इच्छा है ना, बाबा जो 8 टर्न में आते हैं उसके बदले में 8 के बदले में 18 टर्न आ जावे या 20 टर्न आ जावे तो कितना अच्छा होगा। वो मैंने आप सबके तरफ से कह दिया हाँ कि बाबा अभी आपको आने का टर्न बढ़ाना चाहिए। बाबा ने क्या उत्तर दिया वह तो देख लेंगे, कन्फर्म नहीं किया, कमिट नहीं किया। बाबा ने ऐसे युक्ति जवाब देना भी सीखना पड़ेगा, बाबा कितने युक्ति जवाब देते हैं। एक बार एक युगल जो है अभी तक बाप दादा के सामने बैठा था, मैंने बाबा को कहा बाबा इन दोनों में कौन आगे है वो आप बताएंगे। बाबा ने कहा मैं जरूर बताऊंगा। मैंने कहा बताइए, मैंने समझा बाबा कहेगा या तो पत्नी आगे है या तो पति आगे है, कोई तो आगे होगा दोनों में से। बाबा ने ऐसा सुंदर युक्ति भी जवाब दिया कि दोनों एक दूसरे से आगे है। अब दोनों एक दूसरे से आगे से उसमें क्या समझे, कई बातों में पति आगे होगा, कई पत्नी होगी, युगल आगे होगा, इस प्रकार से कुछ होगा। तो इस प्रकार से बाबा ने यहां भी कहा, जब मैंने कहा कि आपको टर्न बढ़ाने पड़ेंगे, तो बाबा ने युक्ति से जवाब दिया वह तो देख लेंगे, पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बाबा ने बता दिया। पहले साधन तो ठीक करो, बच्चे बढ़ेंगे तो साधन भी बढ़ेंगे ना। और फिर बाबा ने कहा मुरली सुनने के समय मुरली उस प्रकार की अवस्था तो बननी चाहिए ना। अब मुरली तो सब सुनते हैं, परंतु उस समय पर हमारी अवस्था क्या है, हमारी अवस्था श्रेष्ठ बननी चाहिए, वो भी बाबा ने याद करा दिया। फिर बाबा ने कहा कि अगर प्रबंध ठीक नहीं होगा तो मुरली क्या सुनेंगे। तब निर्भय भाई ने कहा कि बाबा देखो हम लोगों ने ऊपर नया जो है ना छत लगा दिया है, आप सबको मालूम रहे ऊपर छत, कभी छत देखो पहले यहां तक, यहां से यहां तक दिखाई पड़ते थे, अभी खाली जो रोशनी जो है ना बीच से ही आती है। क्या करना, सारा बहुत मेहनत किया हुआ है, खर्चा भी काफी मेहनत करके किया हुआ है हमारे भरत भाई आदि ने, निर्भय भाई ने सबने। तो इसलिए बाबा ने निर्भय भाई ने कहा बरसात में सेफ्टी अच्छी हो गई है, अभी उसके लिए ऊपर की दूसरी छत डाली गई है। बाबा ने कहा अच्छा है, साधन तो चाहिए, नहीं तो मुरली के समय पर बरसात का पानी हो, पानी को ही गिनते रहेंगे, हम आगे पानी गिरा 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 ऐसा याद करते रहेंगे। तो अच्छा है हम बारिश के समय पर भी मुरली सुन सकते हैं। इसलिए सब में लिमिट चाहिए, साधन चाहिए, लेकिन साधन के वशीभूत होके नहीं चलना है। इतनी बाबा ने साधन के महिमा किया, परंतु आखिर में क्या कर, हम लोगों को कहा, हम तीन भाइयों के द्वारा सबको कहा, साधन तो अच्छे हैं परंतु साधन के वशीभूत होके नहीं चलना है। अभी तो क्या है, साधन के बिना तो चल नहीं सकते क्योंकि बरसात होती है। अगर ज्ञान की रीति से देखो, बाबा ने क्या बताया, ज्ञान की रीति से देखो तो कोई भी बात में चूमच में नहीं जाना है। साधन भी बढ़ाओ तो कितने तक बढ़ाएंगे, और इसके अंदर जितना खर्च हो सकता है इतना करना चाहिए, चूमच में नहीं जाना चाहिए। बाबा ने फिर याद कराया साधन तो यूज करना चाहिए, लेकिन हद में रह करके साधन का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर विदेश की बहनों को बाबा ने बात कही कि आप लोग अपने शरीर के हिसाब से संभाल करते ही हो। इसके अंदर एक बात मैं बताना चाहता हूं, हमारी बड़ी दीदी ने हमको सिखाया था, तीन बातें सिखाई। पहली, सेवा के अंदर सेफ्टी का ध्यान रखना है, दूसरा हेल्थ का ध्यान रखना है, और तीसरा सेवा का ध्यान करना है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार सेवा के नाम पर न सेफ्टी का ध्यान रखते हैं न हेल्थ का ध्यान रखते हैं। इसलिए बड़ी दीदी का ये सिद्धांत बहुत अच्छा है, जो कल बाबा ने भी उनको कहा, आप लोग शरीर के हिसाब से संभाल करते ही हो, ऐसे ही नहीं शरीर क्या करेगा, भोगना तो भोगना ही पड़ता है, ऐसी भावना मत रखो बाबा ने कहा। दवाइयां भी मिलती है वो भी करो। फिर बाबा से नई वेबसाइट बनाई, उसका उद्घाटन किया, बाबा ने कहा सभी अच्छा चल रहा है, न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन ने भी सबको सबकी याद दी। फिर जानकी दादी को कहा मुरली मोहिनी बहन के लिए इनकी संभाल अच्छी रखनी है। फिर निर्भय भाई ने कहा बाबा आपको अगले सीजन में आना है, तो नीलू बहन ने कहा बाबा रथ को पहले ठीक रखना, फिर आने का प्रोग्राम बनाना। इसके जवाब में बाबा ने जवाब दिया जो ड्रामा में होगा वह होगा, इसलिए आप सभी विचार भले दो लेकिन यह नहीं कहना यह होना ही चाहिए। हम बाबा आना चाहिए ऐसा भले आप विचार दो, होना ही चाहिए ऐसा नहीं कहो, नहीं तो इसमें भी फिर जिसमें बाबा आवे वह खुश होते हैं। अगर किसी टर्म में नहीं आता है तो उनके संकल्प पर चलते हैं। ये बाबा ने याद करा दिया, एक टर्म में बाबा नहीं आए थे ना, हाँ तो नहीं आए तो क्या हो गया, तो गुजरात दादी को भी मन में संकल्प चला कि बाबा नहीं आए, और हमारे यहाँ पर भी कितने लोगों ने उलय ना दिया, उसके ऊपर मुझे क्लास कराना पड़ा, वाह बाबा वाह ड्रामा। और इसके कारण हमारा ये क्लास ज्ञानामृत में भी आया है, आप पढ़ देना। और फिर रथ की अकेले की बात नहीं है, बाबा कहते हैं कि एक बात नहीं कई बातें हैं, बाप देख करके उसके अनुसार आप ही करेगा, क्योंकि एक की दिल रखो तो वह समझते मैं भी तो हूं ना, हम बाबा के पास प्रॉब्लम है, एक की दिल की बात को मानी और दूसरे के हमारे परिवार में ईर्ष्या द्वेष थोड़ा नहीं होना चाहिए, इसके लिए बाबा कहते हैं एक की दिल को माना तो दूसरे को मन में होता है, संकल्प विकल्प चलता है, बाबा सीधी बात बता देता है और जो समझते हैं ना वो ही समझ सकेंगे। मेरे बाबा ने कहा एक की बात रखे दूसरे की नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बाप के लिए तो सभी खास है, सभी बच्चे बैठे हुए बाबा के लिए सभी खास है, हर एक के टर्म में 23-24 हजार होते हैं। फिर हमने कहा बाबा टीवी के द्वारा भी लाखों लोग आपको देखते हैं। निर्वेर भाई ने भी बताया कि जोन वाइज भी यहाँ आते हैं, यह बाबा ने कहा यह प्रोग्राम बहुत अच्छा है, भले वहां आए उसका तो छुट्टी है ही। फिर निर्वेर भाई ने बाबा से पूछा है, बाबा हमारी मीटिंग जो होने वाली है अप्रैल मास में, इसके लिए बाबा को पूछा, बाबा मीटिंग के लिए कोई प्रेरणा आप दे जो रोई रही हुई सेवा हम कर सके, जिसके बारे में बाबा ने कहा आप लोग इस आपस में मिलकर के राय करो। तो फिर निर्वय भाई ने दूसरा सवाल पूछा, इस वर्ष की थीम क्या रखें, तो बाबा ने इसके ऊपर भी जवाब दिया आपस में आप मीटिंग करो और उससे ही पहले उसमें से पहले विचार निकालो और फिर बाप के पास हम पास करने के लिए भेजो। फिर बाबा के पास बातें होती रही स्टेज पर, तो बाबा ने कहा कि बच्चे अभी सब हम बातें करना बंद करो और बाबा को प्यार से विदाई दो, इसलिए सब चुप हो गए शांत हो गए और सब ने बाबा को बराबर 10 बजे बाबा को विदाई दिया। इस प्रकार से 8:05 बाबा आए और 10 बजे तक मतलब करीब 2 घंटे बाबा हमारे पास थे, ये वास्तविकता है। और इसका जो फायदा हुआ, जो मुरली सुनी उसके ऊपर हमने यथा योग्य यथाशक्ति आप सबको इसके बारे में बताया। फिर भी याद रहे हाँ साइंस वाले आगे क्यों नहीं आते, साधन बनाते हैं वो तो साधना नहीं होती है, हम सब साधना करें, जो कम साधना करते हैं उसका लक्ष्य होना चाहिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा साधना कर करके अपना जीवन परिवर्तन करें। वैज्ञानिक अपना जीवन परिवर्तन करने की बात नहीं करते, सिर्फ साधन बढ़ाते हैं और इसी के कारण उनका भाग्य श्रेष्ठ नहीं बनता। सत्युग में आएंगे परंतु आकर के सिर्फ बाबा हमारे साधन बनाएंगे, जो अभी काम कर रहे हैं वही काम सत्युग में करेंगे। बातें तो बहुत है परंतु घड़ी याद कराती है 12:45 है और इसके कारण अभी हम क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबने मेरे क्लास को शांति से सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। एक मिनट बाबा की याद में बैठेंगे फिर विदाई लेंगे।